अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय आनंद के ये क्षण परमानंद के ये क्षण हम लोग नित्य प्रति श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस सुंदर भवन में एकत्रित होकर प्रातःकाल की मांगलिक अमृत बेला में हमारे ऋषियों का हमारे महर्षियों का जो प्रसाद भगवान का जो प्रसाद है उसका आस्वादन करते हैं ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। तो ऐसा ये सुंदर नित्य प्रति का रोज का जो हमारा महापुरुषों के पुरुषार्थ से सजाया गया ये सुंदर कार्य है, हम लोग उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। वर्तमान में हम लोग इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के माध्यम से, जिसमें भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा को समझाने की चेष्टा की है अर्जुन को कि किस प्रकार से, जिस प्रकार बाजार में जब हम जाते हैं तो वहां पर बिना पैसे के बिना अर्थ के आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, उसी प्रकार से अध्यात्म के बाजार में भी बिना दैवी संपदा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आपके अंदर ये दैवी संपदा होगी तो ही आपको अध्यात्म में कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा संभव नहीं। जिस प्रकार से बाजार में खाली हाथ जाने पर खाली हाथ ही वापस आना होता, उसी प्रकार से दैवी संपदा ना होने पर अध्यात्म में भी हम खाली के खाली रह जाते। यद्यपि चाहे हमारा सारा जीवन जो है अध्यात्म में ही गुजर जाए, जैसे आप बाजार में खड़े रहो, सुबह से शाम तक खड़े रहो, कई दिन तक खड़े रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं यदि आपके पास दान नहीं है, है ना। आप लोगों से कहते रहो मैं 5 दिन से बाजार में खड़ा हूं, भाई एक मिठाई खिला दो, खिला देगा? कोई नहीं खिलाएगा, है। अगर गहने की दुकान के सामने आप 3 दिन तक खड़े रहो और उस गहने वाले से कहो ये हार बड़ा अच्छा लगता है ये मुझे फ्री में दे दो, दे देगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म में भी है ना, कहा नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही हवत नहीं, है ना। ये जो है बाली कह रहा है महाराज, रामचरितमानस बाली ने कहा, ये बाली का अनुभव है महाराज, है कि जन्म जन्म मुनि जो है यत्न करते हैं और अंत में जाकर संसार की स्थिति दृढ़ हो जाती, ऐसा विकट ये भगवान का माया जाल है जिसमें फंस करके बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने पूर्णतया निष्कपट भाव से भगवान की आराधना की, उनको भी महाराज जो है अंत में ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए बड़ी सहज सरल रीत से भगवान के इन बातों पर वाक्यों पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्त पार्जवम, पहला श्लोक है और उसके पहले जो है दैवी संपदा के गुण के ऊपर हमने कल विचार किया कि भक्त का या अध्यात्म के पथिक का सबसे पहला कर्तव्य ही अभय होना है, है ना। क्योंकि जब तक आप हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को अभय अनुभव नहीं करेंगे तो इसका मतलब अभी हमने अपने परमेश्वर को समझा नहीं है। हम जिस परमेश्वर को मान रहे हैं, जो हमारा आराध्य है, वो अखंड अनंत परम सत्ताधारी है, उसकी सत्ता के सामने कोई दूसरी सत्ता टिकती नहीं है। जब ऐसा दृढ़ विश्वास आपको अपने संग मौजूद उस ईश्वर का होगा तब आप हर स्थिति परिस्थिति में क्या हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे, संसार के भयों से मुक्त हो जाएंगे और जो सबसे अंतिम भय है जिसका नाम मृत्यु भय है उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर आप अपने आप को जीने मरने वाला नहीं मानेंगे कि मैं मर जाऊंगा, हाँ मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो ये सारे भय निकल जाएंगे महाराज। और इसके आपको उदाहरण हमने कल दिए थे, हनुमान जी हैं, प्रहलाद हैं, नचिकेता हैं, जितने भी आप भगवान के भक्त या भगवान के प्रेमी या ऋषियों के जो उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जितना ज्यादा आप जाते जाएं सब जगह यही दिखाई देगा। इन भक्तों ने, प्रेमियों ने, जिन्होंने ज्ञान को धारण किया, परमात्मा को आराध्य बनाया, उनको पूर्णतया अभय दान प्राप्त हुआ। महाराज अभय हो गए, किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। क्या देश क्या विदेश है, हनुमान जी तो विदेश गए ना, लंका है, विदेश जाकर है, किसी भी प्रकार से प्रहलाद की मुस्कुराहट को कोई भी यातना, हिरण्यकश्यप की कोई भी यातना प्रहलाद की मुस्कुराहट को छीन नहीं पाई। ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तविकता में आपके अंदर अध्यात्म ने प्रगाढ़ता धारण कर ली है तो आपकी मुस्कुराहट भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक सांसारिक असत्यता, शारीरिक असत्यता का बोध आपको नहीं होगा तब तक आप अभय नहीं हो सकते। हम लोग कहते हैं ना, भक्ति अलग है, वेदांत अलग है, लेकिन उदाहरण जब देखें तो सब जगह एक ही तरीके के दिखाई देते हैं। जो आप मीरा को मानते हैं ना, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। शरीर से ऊपर उठ चुके भगवान के भक्त, जिनको न जहर की परवाह है, जिनको न नागों की परवाह है, हैं? आपके सामने अगर एकाएक शेर खड़ा हो जाए आके, फिर क्या बोलोगे? बोलोगे हम ब्रह्मास्मि। क्यों भाई, एक से पूछा ना, हमारा शेर तुम्हारे सामने जंगल में आ जाए क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, जो करेगा फिर हमारे करने के लिए कुछ रह जाएगा? फिर तो जो करना है वही करेगा। तुम्हें वो माता चबिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु, यही श्लोक पढ़ने के लिए अगर बोली बचेगी तो बोलोगे, नहीं तो वो भी नहीं बचेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी परिस्थितियों में, उदाहरण देते हैं बहुत से लोग, स्वामी राम तीर्थ का उदाहरण दिया जाता है। महाराज जब अमेरिका गए तो उन्होंने कहा, एक अंग्रेज जो था उनके पीछे पड़ गया। बोले अच्छा, ब्रह्म सत्यम या जगत सत्यम? बोले ब्रह्म सत्यम। अपनी बात पे कायम रहना? बोले हाँ बिल्कुल। तो एक शेर शेरनी का जोड़ा था, पहले जंगल थे ना, तो शेर शेरनी का जोड़ा था, तो बड़े वायलेंट नेचर के होते हैं, तो उसने जो है शेर को गोली मार दी। जब शेर को गोली मार दी, अपने लिए उसने मचान की व्यवस्था की हुई और मचान के ऊपर चढ़ गया, शेर को गोली मार दी, शेरनी वायलेंट हो गई एकदम, और स्वामी रामतीर्थ नीचे खड़े हुए और वो खुद चढ़ गया, और ऊपर से जाके उसने कहा, बोलो महाराज अगर आप कहते हो जगत सत्यम तो मैं शेरनी को गोली मारता हूं, और फिर नहीं तो आप ब्रह्म सत्यम कहते हो तो ब्रह्म जाने और आप जानो और शेरनी जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं। जरा सोचो, स्वामी रामतीर्थ ने कहा ब्रह्म सत्यम, बोले फिर आप जानो और आपकी शेरनी जाने, आपका काम जाने। शेरनी जो है खूंखार अवस्था में, क्योंकि शेर मर गया तो वायलेंट हो जाते हैं, ये तो फ्यूरियस एकदम वायलेंट हो जाते हैं, कोई सीमा नहीं रहती उनकी जो है हिंसक प्रवृत्ति जो उनकी होती। दौड़ी स्वामी रामतीर्थ, हाथ फैला के खड़े हुए, ओ माई सेल्फ, क्योंकि अमेरिका की शेरनी थी तो अंग्रेजी जानती थी, हिंदी तो जानती नहीं थी है ना, तो वहां तो महाराज उस शेरनी से भी इंग्लिश बोलना था, है तो हिंदी में बोलते तो उसको समझ में नहीं आता है तो स्वामी रामतीर्थ ने ओ माई सेल्फ जब दो तीन बार उस शेरनी की आंखों में आंखें डाल के कहा, शेरनी शांत हो गई, और शांत होके उनके चरणों में बैठ गई, जैसे कुत्ता बैठ जाता ना ऐसे बैठ गई। अंग्रेज खड़ा होके देख रहा, हो क्या रहा, कभी संभव ही नहीं है कि इतना भयंकर अपने क्रोध को कोई विकसित कर ले, उसको इतनी जल्दी शांत कर ले, संभव ही नहीं होता। आपको जिस दिन गुस्सा आता, आपने देखा नहीं, दिन भर गुस्सा आता, आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, न खाना न पीना, लेकिन एक सेकंड के भीतर उस शेरनी को शांत होना पड़ा। किसके कारण? किसके कारण? ब्रह्म सत्यम। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमको दो मिनट के अंदर किसका विश्वास हो जाता? संसार। अरे भाई एक बार बताओ, अभी महात्मा बैठा, अभी एक फिल्मी हीरो आके यहां बैठ जाए, अभी सारे फोटो खींचने लगेंगे उसके संग, है, सेल्फी शुरू हो जाएगी और किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, खाली एक बार जो है खबर फैल जाएगी फलाना आया प्रेमपुरी में, है यहां पर आप लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे, सारे लड़के लड़कियां भर जाएंगे। जगत का विश्वास है, इसलिए स्वामी राम तीर्थ के चरणों में शेरनी कुत्ते की तरह पड़ी हुई और दूसरी तरफ वो भी मचान से नीचे आ गया, उसका भी भय खत्म हो गया। अभयम, देखिए भगवान का जो प्रेमी है जो भक्त है स्वयं तो अभय होता, दूसरे को अभय करने की हिम्मत रखता है ना। भक्ति को वरदान दिया भगवान ने भागवत में कि जाओ तुम सबको अभय कर दो। वो अंग्रेज पड़ा हुआ हमारा है दूसरे चरणों में अंग्रेज लेटा हुआ, कमाल की बात है। एक सेकेंड के अंदर ये क्रोध कैसे शांत हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। अग्नि को अग्नि से भय नहीं होता, जल को जल से भय नहीं होता, वायु को वायु से भय नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा को आत्मा से कोई भय नहीं होता। टिहरी में स्वामी राम तीर्थ की गुफा है, अब तो डूब गई टिहरी डैम के अंदर, लेकिन जिस समय वो वहां रहते थे, अभी मैं जहां रहता हूं ऋषिकेश में, जिस स्थान में, वहां पर एक नौजवान महात्मा आए, कई वर्ष पहले की बात है, 20-25 वर्ष पूर्व, उनके अंदर नया नया वैराग्य था और उनका विचार बना कि मैं भी जो है स्वामी राम तीर्थ की तरह गुफाओं में जंगलों में रहूं, तो महाराज वो स्वामी राम तीर्थ की गुफा में रहने के लिए पहुंच गए टिहरी में। वो गुफा अभी तक थी, अब तो डूब गई पानी के अंदर। तो जिस समय वो उस गुफा में जाकर दिन में चले गए और रात में जब उनकी आंख खुली तो महाराज उनके पसीना छूटने लगा उस गुफा के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने बाहर देखा, गुफा तो कोई लंबी चौड़ी तो होती नहीं है, तो जब बाहर देखा तो 5-7 शेर बैठे हुए थे, एक दो नहीं, बोले 5-7 शेर। अगले दिन ही वो वहां से भाग गए, बोले महाराज अगले दिन ही मैंने वहां से रिवांजलि। जरा विचार कीजिए, आज ये है बात 1900 कुछ की, जब वो रहते थे वहां पर 1900 कुछ प्रारंभ में, 1904 या 5 की बात है या उससे पहले की, उस समय क्या अवस्था रही होगी, जरा विचार करके देखिए थोड़ी देर। वो कैसे उसमें गुफा में रात दिन रहते थे उन शेरों के संग, और एक नहीं बहुत सारे महात्मा हमारे स्वामी परसोत्तमानंद जी वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश में उनके संग से रहा। एक अंग्रेज आया, बोला सुना महाराज जी आपके संग से रहता, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो रात का शाम का समय था और उन्होंने उसका कुछ नाम रखा हुआ था और महाराज वो देखते ही देखते शेर प्रकट हो गया सामने, आवाज लगाई ना उन्होंने, जैसे हम लोग पालतू कुत्तों का आवाज लगाते ना ऐसे उन्होंने शेर का नाम कुछ रखा था, तो आवाज लगाई सामने खड़ा हो गया। उसको विश्वास नहीं था कि शेर रहता है, वो तो सामने खड़ा हो गया और शेर की तो आदत होती है कि जीभ बाहर करके हांफता है, और वो अंग्रेज के सामने जब बड़े बड़े दांत और सामने शेर, तो वो तो महाराज ऐसे ऐसे थे कांपने लगा, बोले जब डरते हो तो आए क्यों जंगल में, और वो कहीं से उस समय मांसाहार करके आ रहा था, बदबू आ रही थी, बोले जा यार तेरे मुंह से बदबू आ रही, जाओ जाओ इसको डर लग रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, वो शेर चला गया। आपको मालूम है उस शेर ने अंतिम समाधि गंगा जी में ली, आखिरी में जब बिल्कुल वो बूढ़ा हो गया तो महाराज जी उसको जो है रोटी दिया करते थे और उस रोटी से ही वो अपना जीवन यापन करता था, और जब मृत्यु का समय आया तो गंगा जी की धार के बीच में चला गया उसे अपने आप स्वतः। ये महापुरुषों का तेज, स्वयं अभय और दूसरे को भी अभय दान देने वाले, ये अभयम भगवान का जाना है। भगवान ने हाँ ऐसे ही माना जाता है, तो अभयम भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन को क्या किया, अभय किया कि नहीं किया, जो भयभीत अर्जुन था क्या होगा, रात दिन हम परेशान क्या होगा, अरे होगा क्या, यहां कुछ भी होने वाला नहीं है, अभयम। जब ऐसे तुम अभय हो जाओगे तो एक विशेष मस्ती का तुमको अनुभव होगा और उसके आगे फिर कुछ टिकता नहीं, संसार की सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती। महाराज होलिका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई प्रहलाद का, जहर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया मीरा का मारा है, सांप ने काटना तो दूर देखा भी नहीं मीरा की तरफ मारा है, भुजंग सांप भेजा था। आप अगर देख लो, अगर देखना है तो हमारी कुटिया में आओ, हम आपको सांपों से मिलाएंगे। हमारे पास रहते हैं दो चार, हमारे भी मित्र हैं। हाँ, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। जहरीले वाले सांप महाराज। तो जब तक आपको अभयता का अनुभव नहीं होगा, ये तभी होगा जब आप परमात्मा की सत्ता को समझेंगे। हम ऊपर ऊपर परमात्मा की सत्ता को गा लेते हैं, इसका परिणाम ये होता है कि हमको भगवान के ऊपर विश्वास होता ही नहीं है, हमको संसार के ऊपर ही विश्वास होता है, और इसीलिए हमको जो है बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है, और दुखों का सामना करते हुए प्रलाप करना पड़ता है, और यही हमारी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, और भगवान को दयनीय व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान को कैसा पसंद? प्रहलाद की तरह, चाहे जितने कष्टों की बारिश की महाराज, अगर उनमें से एक कष्ट भी हमारे ऊपर आ जाए जो प्रहलाद को दिया गया, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा महाराज। भगवान का नाम लेना तो दूर, और वो उसी मस्ती में भगवान के हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेते थे प्रहलाद। ये विशेषता है अभय होने की। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, केवल संक्षिप्त रूप से हमको विवेचन करना है। तो स्वयं एकांत में बैठकर इन भक्तों के ऊपर विचार कीजिए, हनुमान जी हैं, प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, ना जाने एक छह जो है साल का बालक घनघोर जंगल में महाराज तप कर रहा है। अगर एक रात के लिए भी आप जंगल में जाकर देखो, अनुभव करके तो देखो कम से कम कि जंगल होता क्या है महाराज, बीहड़ होता क्या है, भगवान कहां निवास करते हैं। तो छह साल का बालक जंगल में घनघोर जानवरों के बीच में महाराज तप कर रहा है, अभय, कैसे अभय हैं ये लोग। तो महाराज प्रहलाद को देखा गया, हनुमान जी को देखा गया, मीरा को देखा गया, तो बहुत सारे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे। उनके ऊपर बारंबार जब आप विचार करेंगे तो आपका जीवन भी अभय हो जाएगा, क्योंकि पहली सीढ़ी तो महाराज जब आप जल में कदम रखेंगे तभी तो तैरना सीखेंगे। पहली सीढ़ी ही अध्यात्म की अभय होना। अपने आप को अनुभव कीजिए कि वो परमार्थ सत्ता जो आप अपना स्वरूप मानते हैं वास्तविकता में कुछ और नहीं, मेरे अंग संग हमेशा रोम रोम में बसा हुआ, आपको फिर किसी भी परिस्थिति में कोई भय का अनुभव नहीं होगा महाराज। हाँ, ध्यान दीजिए, ये विशेषता है। तो जिस समय आप अभय अनुभव करेंगे, आधा आनंद तो महाराज समझ लीजिए अध्यात्म का आपको उसी समय आ जाएगा, और जब तक अभय नहीं होंगे, चाहे जितना भगवान को गाते रहो, बाजार में खाली हाथ खड़े रहो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा जो दैवी संपदा का गुण आता है, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मतलब, सत्व का मतलब जो हमारा अंतःकरण है उसको बोलते हैं सत्व, और संशुद्धि का मतलब आप लोग जानते हैं शुद्धिकरण, यानी शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण। सबसे पहले हमारे अंदर भय का सर्वथा अभाव हो, उसके बाद हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो। तो जब हमने अंतःकरण के ऊपर विचार करना प्रारंभ किया, तो अपना अंतःकरण, ये तो ऊपर की दुनिया है आपकी, दस इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां, ये ऊपर का संसार है जिसमें हम आप जीते हैं, और इनका सबका नियंत्रण करने वाला है मन, है ना, जो कुछ भी ना होते हुए अपने बहुत बड़े अस्तित्व को रखता है, तो वो अंतःकरण में शामिल हो जाता है। तो जब हम अपनी बुद्धि की विवेचना करते हैं तो उसमें हमको चार खाने दिखाई दिए, एक दिखाई दिया महाराज बुद्धि, दूसरा दिखाई दिया मन, तीसरा दिखाई दिया अहंकार, और चौथा दिखाई दिया चित्त। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे बना हमारा अंतःकरण, जो हमारी अंदर की दुनिया है, जिससे हम इस बॉडी को, इस शरीर को नियंत्रित करते हैं। अंतःकरण के द्वारा ही तो आपका ये सारा शरीर चलना फिरना, खाना पहनना ओढ़ना सब होता है कि नहीं होता है? हैं? तो इन चार चीजों को जो हमने अशुद्ध रूप में धारण कर रखा है, जिस प्रकार से जब आप सोने की खान में या हीरे की खान में जाएंगे तो वहां आपको सोना कोई शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा, वो मिट्टी के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से हीरा भी मिट्टी के डेले के रूप में मिलेगा, वो तो खान में जो काम करते हैं वो जानते हैं महाराज ये डेला नहीं है, ये हीरा है। तो उस डेले को लाके महाराज फिर वो साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसको फिर मशीन के ऊपर तराशा जाता है, तब जाकर उसमें चमक विकसित होती है। इसी प्रकार से सोने को जब भयंकर ताप में भट्टी में डाला जाता उस मिट्टी को, तब उसमें से शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति होती। इसी प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है वो अशुद्ध अंतःकरण है, यानी हमारा अहंकार भी अशुद्ध, हमारी बुद्धि भी अशुद्ध, हमारा मन भी अशुद्ध और हमारा चित्त भी अशुद्ध। अब जरा देखो, जब तक आप इनको शुद्ध नहीं करोगे अध्यात्म के बाजार में आपको कुछ भी, ये नोट है महाराज, है ना, ये सब नोट हैं जो आपको खर्च करके कुछ मिलेगा, अध्यात्म में परमेश्वर मिलेगा, या दूसरी भाषा में कहें तो निज स्वरूप मिलेगा, या और दूसरी भाषा में कहो तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति कहो परमेश्वर कहो या निज स्वरूप कहो, सब एक ही चीज है। तो सत्व संशुद्धि। अब समस्या ये है कि पहले तो ये आप विचार करो कि इसमें अशुद्धता क्या है, है ना, विवेक क्या चीज। अरे भाई विवेक का मतलब क्या होता है, हैं? ये रटा हुआ फार्मूला बोल दिया, अरे कुछ थोड़ा आगे भी बढ़ जाओ। तो विवेक का मतलब विचार शक्ति, आपके अंदर विचार करने की क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। एक हमको दिए भगवान ने दो नेत्रों से देखने की शक्ति, जिससे आप संसार को देख, एक दी है हमने विवेक शक्ति हमको भगवान ने। जैसे विवेक शक्ति से हम क्या देख सकते हैं, क्यों भाई, विवेक शक्ति से आप क्या देख सकते हो, विवेक शक्ति से आप देख सकते हो कि हमारे यहां इस समय दिन है, अमेरिका में इस समय क्या हो रही होगी, शाम हो रही होगी, रात्रि का समय हो रहा होगा, इस किस दृष्टि से देखा आपने, ये विचार दृष्टि है कि नहीं। विवेक दृष्टि से आपको ना दिखाई देते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब आप विचार दृष्टि के द्वारा अनुभव करेंगे तो आपको अपने अंतःकरण की अशुद्धियां दिखाई देंगी। नंबर एक, अहंकार के ऊपर जरा विचार करो कि हमारा अहंकार शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जब आपने अपने अहंकार के ऊपर विचार करना प्रारंभ किया तो पता चला महाराज कि हमारा अहंकार अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि हमारा अहंकार इस शरीर के संग जुड़ा हुआ है। मेरा नाम ये है, मैं फलाने का बेटा हूं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरी दुनिया है। ये जो अशुद्ध अहंकार है जिसको हमने अपने ऊपर लादा हुआ है, इसको क्या करना, ये अशुद्ध सोने को शुद्ध करना है। अहंकार जाएगा नहीं, अहंकार तो रहेगा ही रहेगा महाराज। लेकिन जब उन्होंने महाराज शुद्ध किया उस सोने को, तो ये अहंकार शुद्ध होकर महाराज जब बाहर निकला तो वो मट्टी नहीं थी महाराज, उसमें भयंकर चमक रही आ गई। वो चमक क्या थी, तब उसने अपने शुद्ध अहंकार को अनुभव किया कि मैं साधारण सा एक शरीरधारी नहीं, मैं एक साधारण सा पति पत्नी वाला नहीं, साधारण सा कमाने धमाने वाला मकान का मालिक नहीं, मैं तो अनंत हूं, मैं अखंड हूं, मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। शांत दिखाई देने वाला सागर जब अपनी शक्ति को प्रचंड करता है तो बड़े बड़े शहरों को निगल जाता है महाराज। ऐसी अखंड शक्ति रखने वाला मैं हूं, ये शुद्ध अहंकार है। ये क्या है, ये निज स्वरूप है कि नहीं है, ये हमारा आपका अपना स्वरूप है और यही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा भी अखंड जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते हैं। जो भी याद करे वहां पर प्रकट हो जाते हैं महाराज। तो परमात्मा को कहीं जाना आना नहीं पड़ता। अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु सश्रणोत अकर्णा, बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथ के कार्य करता है, मन से भी तेज गति वाला है। सबसे तेज गति किसकी है? मन की। और मन से भी तेज गति वाला परमेश्वर है। ये हमारी सत्ता है, इसको भूल करके हमने शरीर की सीमा को ही अपनी सीमा मान लिया है। ये अशुद्ध अहंकार है। शरीर के धर्मों को हमने अपना धर्म मान लिया है, ये अशुद्ध अहंकार है। हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं किसको? शरीर को। ये हमारा अशुद्ध अहंकार है। तो इस अशुद्ध अहंकार को छोड़कर परम शुद्ध अहंकार में स्थित हो जाओ। अपने आप की परम सत्ता का अनुभव करो। मैं इस कुएं में बंद मेंढक नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मेरी सत्ता अनंत है, मेरा कोई आदि अंत नहीं है। ये अहंकार दृढ़ अहंकार है, ये कभी ना समाप्त होने वाला अहंकार है हमारा, है ना। इसी को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, कहते स्वमृतम अस्मि। ऋषि ने अनुभव किया हमारा, त्रिशंकु ऋषि ने, कि अमृत कहीं ढूंढने की या पीने की आवश्यकता नहीं, वो अमृत स्वरूप तत्व मैं स्वयं हूं। ये वास्तविक अहंकार है। लेकिन जब आप अपने आप को शरीर मानकर, जो आपका नाम शरीर का रख दिया गया, उस नाम के संग अपने आप को जोड़कर देखने लगते हैं, है ना, तो आपकी क्या हो जाती? दुर्दशा हो जाती कि नहीं हो जाती? आपका नाम ले लेकर एक कमरे में आप बैठे हो, दूसरे कमरे में दो व्यक्ति बैठे हो, और आपका नाम ले लेकर महाराज आपकी बुराई कर रहे हो, और दूसरी तरफ मैं आपको गीता पाठ सुना रहा हूं, जरा बताओ तुम्हारे कान कहां होंगे? क्या भाई, कहां होंगे कान? गीता पाठ में या अपनी बुराई की ओर? तो हमारा अहंकार कहां जुड़ा हुआ है? सीधी सी बात है, शरीर के संग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा ध्यान गीता पाठ की ओर न जाकर कहां जा रहा है? अपने शरीर की बुराई की ओर जा रहा है। और इस शरीर की गति क्या है? चार दिन बाद समाप्त हो जाएगा और अपने ही लोगों के द्वारा जला के क्या कर दिया जाएगा? राख कर दिया जाएगा। कोई दूसरे नहीं आएंगे, अपने ही घर वाले महाराज जलाएंगे इस शरीर को। तो महाराज इसलिए इससे पहले ये शरीर और शरीर के अहंकार तुमको खा जाएं, तुम ही इस अहंकार को क्यों ना खा जाओ? इस अहंकार को खा जाओ और शुद्ध अहंकार में जो तुम्हारा अपना कभी ना नष्ट होने वाला, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर के संग इसके सारे रिश्ते नाते जो भी आपने कमाई धमाई की है सब इस शरीर के संग नष्ट होने वाले हैं, कुछ भी बचने वाला नहीं। तो उस परमात्मा की सत्ता जो कभी भी नष्ट होने वाली सत्ता नहीं है, उस परम अहम ब्रह्मास्मि रूपी अहंकार के संग, अहम के संग जुड़ जाओ। ये शुद्ध हो गया महाराज अहंकार। उसके बाद नंबर आता बुद्धि का। अब बुद्धि में क्या अशुद्धता है? क्यों भाई, बुद्धि में क्या अशुद्धता है? कोई है साबुन ऐसा बाबा रामदेव ने बनाया हो कि सुबह सुबह बुद्धि लगा के धो दो? अब बुद्धि में क्या अशुद्धता है? फंस गए ना जाल में। देखो बड़ी साधारण सी चीजें हैं। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। क्या कार्य है? निश्चय। और इसकी अशुद्धि क्या हुई? अनिश्चित बुद्धि हुई कि नहीं हुई? अरे भाई, निश्चय करना इस बुद्धि का कार्य है। कोई भी कार्य जब तक निश्चय नहीं होता, आप उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हो। जब तक निश्चय नहीं हो जाता, मन कहता ये करो, न कहता नहीं ये नहीं, बोले फिर ये करो, फिर संकल्प विकल्प चलते चलते आखिरी में बुद्धि कहते नहीं यही करना, और फिर आप उसी कदम को आगे बढ़ा देते हो। तो बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। और जब बुद्धि अनिश्चित हो जाती है तो अशुद्ध कहलाती है। दो चीजें हैं हमारे सामने, एक है संसार की सत्यता और दूसरी है परमेश्वर की सत्यता। कितनी चीजें? केवल बहुत ज्यादा नहीं है, गंदगी केवल एक ही बार है। या तो आप निश्चय करो परमेश्वर सत्य है, और या निश्चय करो संसार सत्य है। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप? आपका विचार क्या कहता है, कौन सत्य है, संसार सत्य है या भगवान सत्य है? हाँ, ये तो रटा हुआ है इसलिए बोलना ही बोलना है। ऐसा विश्वास है आप लोगों का है? ऐसा विश्वास नहीं है महाराज, 1% विश्वास नहीं है, बाकी परसेंटेज तो छोड़ दो, भभगवान के ऊपर 1% भी विश्वास करना बहुत बड़ी बात है महाराज, इतना आसान नहीं है भगवान के ऊपर विश्वास करना। संसार की माया ही इतनी भयंकर है कि हमको भगवान पे विश्वास नहीं होता, संसार की हर सत्ता पे विश्वास होता है। पूर्णतया असत्य सत्ता पर विश्वास होने के कारण हमारी बुद्धि निश्चित रूप से परमात्मा की नहीं हो पाती है और बार बार दौड़ करके किधर आ जाती है, सुनती भगवान को है और भागती किधर की तरफ है, संसार की ओर भागती है। भाई सीधी सी बात है कि आपको कोई व्यक्ति एक जो है हीरे के बने हुए हनुमान जी दें और एक मिट्टी के बने हुए हनुमान जी दें, जरा दिल से बताओ कौन से लोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हनुमान जी से मतलब नहीं है। क्योंकि हनुमान जी से मतलब होता तो आप कहते महाराज कोई भी दे दो, जो मर्जी आए दे दो, मिट्टी वाले दे दो, तो है? अरे आपने गीता में तो समलोष्टास्म कांचना, क्यों भाई कहां पढ़ा है, गीता में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? दो दो बार भगवान ने कहा आत्मज्ञानी ज्ञानी पुरुष कौन है, जो लोष्ट में, मिट्टी में, पत्थर में, अश्म पत्थर में, लोष्ट में, मिट्टी में, कंचन में, सुवर्ण में, तीनों में सम देखता है, उसको महाराज ज्ञानी महापुरुष भगवान का भक्त कहा जाता है। तो चाहे सोने में मिले और चाहे हीरे में मिले, चाहे मिट्टी में मिले, हमारा मतलब तो हनुमान जी से है, ना कि उन मूर्तियों से है कि नहीं? लेकिन चूंकि संसार की सत्यता बनी हुई है महाराज, इसलिए हमको फिर दिखाई देगा हाँ हीरे वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा, होगा कि नहीं होगा? 99% कोई, भगवान कहते नहीं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई 1,000 करोड़ों में होगा जो भगवान के लिए ही भगवान को भजेगा, अन्यथा तो महाराज पदार्थों के चक्कर में ये मनुष्य घूम रहा। इसलिए हम कहा हमारी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पाती है कि संसार सत्य है या परमेश्वर सत्य है, और इस झगड़े में हमारा सारा का सारा जीवन सुनते सुनाते ही निकल जाता है, और अंत में परमेश्वर याद आने की बजाय, सुखदेव जी से कहते हैं जो है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से है कि अंत में, अंते नारायण स्मृति, ये तुम्हारा बस ये निश्चय होना चाहिए एन केन प्रकारेण, अंत में परमेश्वर याद आ जाए, उस समय हमारे भाव बदल जाते हैं महाराज, कुछ का कुछ ही दिखाई देने लगता है, हाय सब छूट जाएगा, हाय सब बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा जो मैंने तांडव नृत्य किया वो सब नष्ट होने वाला है, सब ऐसे विचारों से वो ग्रस्त हो जाता है महाराज, उस समय उसको परमेश्वर की याद नहीं आती, अशुद्ध बुद्धि। सत्य संशुद्धि चाहिए, निश्चय करो कि केवल परमेश्वर सत्य है तो है, इसके आगे मैं किसी भी कीमत पर संसार की सत्यता स्वीकार करने वाला नहीं हूं, ये बुद्धि की शुद्धि है। शुद्ध अंतःकरण समझिए, शुद्ध अंतःकरण का मतलब कोई साबुन से धो के साफ नहीं होगा या वेदांत गीता सुन लेने से नहीं साफ होगा महाराज, ये आपको निश्चय करना पड़ेगा। इस शुद्ध बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध कर दीजिए और इस बुद्धि को समझा दीजिए कि बस परमात्मा के अलावा तुमको और कुछ भी देखना नहीं है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई, अहंकार शुद्ध हो गया, उसके बाद क्या शुद्ध हुआ, बुद्धि, अब क्या बचा, अब आया महाराज असली जो आपका राजा है वो कौन है, मन है। एक बात बताओ, शास्त्र की बात मानते हो, गुरु की बात मानते हो या मन की बात मानते हो? बिल्कुल हृदय से बताना, झूठ मत बोलना। क्यों भाई, किसकी मानते हो? ना हम गुरु की मानते हैं ना शास्त्र की मानते हैं, किसकी मानते हैं, मन की मानते हैं। तो हमारा असली गुरु कौन हुआ? क्यों भाई, मन ही हमारा गुरु हुआ कि नहीं हुआ? मानते तो हम अपनी ही हैं महाराज, जो हमारी अनुकूल हो, जो हमारी स्थिति के द्वारा जो है बिल्कुल सहज सरल हो, उसी को हम स्वीकार करते हैं। अब मन की अशुद्धि क्या है? क्यों भाई? भाई टीचर लोग बैठे हुए हो, कुछ तो बताओ हैं? मन का काम क्या है? पहली बात तो मन नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ही नकली। ये नोट ही पूरा का पूरा नकली है, मां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है, और वही हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये बुद्धि को भी, जो परम शांत अवस्था वाली बुद्धि है, उसको भी चैन से रहने नहीं दे रहा। इसकी अशुद्धि है संकल्प और विकल्प। मन का कार्य है संकल्प विकल्प। तो सबसे पहले हम अपने संकल्प विकल्प को धीरे धीरे सनय सनय कोशिश करें कि हम अपने संकल्प विकल्प को छोड़ने का क्या करें, प्रयास करें। एक बार जो है अखंडानंद जी के बारे में शायद मैं पढ़ रहा था या सुन रहा था, किसी आश्रम में श्रीमद् भागवत का एक वर्ष का पारायण रखा कि पूरे एक वर्ष जो है भागवत की कथा जो है सुननी है। तो महाराज पूरे एक वर्ष भागवत की कथा चली, आखिरी के जब छह दिन रह गए, कितने दिन, पांच छह दिन जब रह गए, तो जो महाराज श्री आश्रम के थे उन्होंने कहा बस कथा बंद कर दो, अब चलते हैं घूमने। बोले महाराज कमाल करते हो, निर्विघ्न पूरा साल गुजर गया भागवत सुनते हुए, अब छह दिन तो बचे हैं, और इन छह दिनों को आप कह रहे हो पूरे साल की मेहनत क्या कर दो, बर्बाद कर दो। बोले यही तो वेदांत है, यही तो वेदांत है महाराज। जब आप संकल्प विकल्पों को त्याग करने में आपको कोई परेशानी, एक क्षण में महाराज जैसे ही बात समझ में आ गई, उसी दिन महाराज भागवत समाप्त कर घूमने, पूरे साल भागवत श्रवण किया, और पूरे साल के श्रवण का जो है क्या लिया, संकल्प लिया, लेकिन आखिरी के छह दिन में उस संकल्प को तोड़ दिया। ये जो संकल्प विकल्पों में हम लोग बंधे हुए हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो तो ऐसा हो, इन सब को त्याग कर एक रस हो जाओ, और इसी को बिल्कुल साधारण भाषा में मन की शुद्धि कहते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, है ना। भगवान श्री राम को जहां पर सबरी के फलमूल मिले वहां फलमूल खाए, जहां पर सुंदर भोजन मिला वहां सुंदर भोजन किया। भगवान ना सुंदर भोजन के संग बंधे और ना फल मूल के संग बंधे महाराज, उनको तो जैसा था वैसा ही स्वीकार है। ये मन की शुद्धता कहलाती। ज्यो ज्यो आपके संकल्प विकल्प शांत होते जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, फिर इंद्रिय निग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपकी इंद्रियां स्वतः ही क्या हो जाएंगी, निग्रहित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अन्यथा जिंदगी भर कोशिश करते रहो, ये इंद्रियां शांत होने वाली नहीं, क्योंकि इनका राजा ही इंद्र है, मन है। संस्कृत में मन को इंद्र कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है किस चीज का, चित्त। अब ये चित्त क्या है? क्यों भाई? अरे टीचरों को कुछ तो सहायता करनी चाहिए। चित्त क्या है, हैं? जो हमारे अंदर स्फुरण है, जिस स्फुरण के कारण आपको ये संसार दिखा। भाई मुर्दे में और हम में क्या अंतर है? हम स्फुरित हैं और मुर्दा जो है वो मृत शरीर क्या है, शांत है, उसके अंदर किसी प्रकार की स्फुरणा नहीं है। उसके बगल में चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे चिल्लाओ, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे ऊपर हर चीज का प्रभाव पड़ता है, गाना हो, नाच हो, रोना हो, कुछ भी हो, हम हर चीज का रिएक्शन देते हैं। इसको कहते हैं स्फुरण। हमारे अंदर क्या हो रहा है, स्फुरणा हो रही है, और इसी के कारण आपको ये जगत दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, इसका आप अनुभव कर रहे हैं। इसको कहते हैं चैत्यता, इसको चित्त की चैत्यता कहते हैं। अब ये गंदा हो गया, कैसे गंदा हो गया? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्षा ऋतु का उदाहरण दिया, भूमि परतवा ढावर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। जिस समय वो क्रिस्टल क्लियर बूंद पानी की आसमान से गिरी तो महाराज उसमें ऐसी चमक थी कि सूर्य की रोशनी जब उस बूंद में पड़ी तो महाराज इंद्रधनुष बन गया उस बूंद के अंदर, इतनी शुद्ध थी वो। लेकिन जैसे ही उस बूंद ने भूमि का स्पर्श किया, अब उसका नाम ही बदल गया, अस्तित्व ही बदल गया महाराज। अब उसको कोई शुद्ध बूंद पानी की नहीं कहता, अब उसका नाम पड़ गया कीचड़। क्या बन गया? चित्त अशुद्ध हो गया। जैसे वो शुद्ध जल अशुद्ध हो गया, वास्तविक सत्य ये है कि उस जल का कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। फिर सूर्य का ताप लगेगा और वो शुद्ध बूंद जैसी आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी, मिट्टी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो जरा देखिए अपनी चित्त की चैत्यता को। ये जो शरीर रूपी मिट्टी के संग ये जो आत्मा है मिलकर के एक हो गया, इसका नाम पड़ गया कीचड़। हम क्या हो गए? अरे इंद्रियों के दास हो कि नहीं हो? भूख प्यास दुख दर्द इनके गुलाम हो कि नहीं हो? एकाएक अभी तुम्हारे पैर में भयंकर दर्द होने लगे, यहां बैठोगे सत्संग सुनोगे, यहां से उठ के भागोगे डॉक्टर ढूंढने लगोगे। ये जो हमारा कीचड़ बन जाना है, ये जो हमारी चित्त की चैत्यता है, ये जो स्पंदन है, इस चैत्यता को समाप्त कर देने का नाम ही शुद्धता है, चित्त की शुद्धता है। जैसे वो बूंद जब आई तब शुद्ध थी और जब ताप लगा तो वापस गई तो शुद्ध थी, उसी प्रकार से हमारा आपका भी स्वरूप है महाराज। इस शरीर के संग आत्मा लिपटकर अपने आप को शरीर मान रहा है, मैं फलाना हूं फलाने का बेटा, भी कीचड़ लिपटा हुआ है और इस कीचड़ के संग हमारा नाम कीचड़ हो गया महाराज। इस संसार के संग हम कीचड़ बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन सूर्य के ताप की तरह आपको इन शास्त्रों की गुरुओं की ऋषियों की वाणी का ताप लगेगा तो आप फिर शुद्ध होकर वापस चले जाओगे। इसी को कहते हैं निज स्वरूप की प्राप्ति, इसी को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण, और इसी को कहा जाता परमेश्वर की प्राप्ति, इसी को कहा जाता है मुक्ति। जैसे ही वो बूंद जल में जल रूप आई, मिट्टी में मिलकर कीचड़ बनी और पुनः शुद्ध होकर वापस गई तो वो मुक्ति कहलाई। वास्तविकता में वहां कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो कीचड़ वाली घटना घटित हुई इसी का नाम है अज्ञान। संसार के संग एक रस होकर, शरीर के संग एक रस होकर हम अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी ना जाने क्या क्या मान बैठे हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर इस वाणी का प्रताप, इस वाणी का ताप लगेगा उसी दिन तुम शुद्ध हो जाओगे और फिर झिलमिलाते हुए वापस चले जाओगे, परम प्रकाशित ज्ञान हो जाओगे। क्यों भाई, बात समझ में आती कि नहीं आती? इन भक्तों को, इन भगवान के प्रेमियों को, इन ज्ञानी महापुरुषों को क्या मिला, क्या समझा इन्होंने? तो अभयम सत्व संशुद्धि सबसे बड़ी चीज है। अंतःकरण शुद्धि रूप जो हमारा नोट है, क्योंकि अध्यात्म में खरीदना है, बाजार तो यहां भी है महाराज, लेकिन ये नोट है। जब तक ये नोट आपके पास नहीं होंगे, अध्यात्म के बाजार में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे रात दिन खड़े रहो और करोड़ों जन्मों तक खड़े रहो, एक दो जन्म की बात ही नहीं है, करोड़ों जन्मों तक, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। ये संसार की सत्यता का प्रभाव है कि हमारा सार, हम वास्तविकता में ज्ञान ग्रहण नहीं करते, हम अपने आप को पढ़ाने की चेष्टा करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, भूल है। खाने को देखते मत रहो, थाली को खा जाओ अगर तुम्हारे अंदर भूख है, और भूख नहीं है तो थाली से अलग हट जाओ। थाली के सामने खड़े रहने से क्या मिलेगा? तो भूख शांत करने के लिए थाली थी, हमने उस भूख को शांत नहीं किया, हम खाली थाली को देखते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज तक हमको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो मैं उदाहरण देता हूं, आप उसको स्वीकार कर लो। अगले दो घंटे बाद प्रलय हो जाएगा, बोलो अब क्या क्या करोगे, क्या क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? अगर दो घंटे बाद प्रलय हो जाए, साफ जलमग्न हो जाए पूरी पृथ्वी, है ना। अरे जैसे ये तस्वीर लटकी हुई है ना, ऐसे ही लटके हुए हो, कुछ नहीं है दम। आश्चर्यजनक परमेश्वर की शक्ति है महाराज। ये गोल पृथ्वी जो है, देखो जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ऐसे गोल है और यहां पर हम लटके हुए हैं, इस तस्वीर की तरह लटके हैं। पूरा पूरा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब लटके हुए हैं महाराज। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि खुला समुद्र कैसे लटका हुआ स्पेस में। स्पेस जाने, हम तो खुद स्पेस में, लेकिन वातावरण के कारण चंद्रमा कोई दूर नहीं है। चंद्रमा तो आपका पड़ोसी है, जैसे सामने वाली बिल्डिंग ऐसे ही चंद्रमा हमारा पड़ोसी है। लेकिन हमको ऐसा अनुभव होता है ना जाने चंद्रमा कहां है। ये परमात्मा की विशेषता है। जरा सोचो, अगर दो घंटे बाद प्रलय हो जाए तो तुम्हारा क्या 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 करोगे, क्या क्या व्यवस्था करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ। तो यही निर्णय है। शास्त्र कहता है अगले सेकंड प्रलय हो, दो घंटे तो बहुत दूर की बात, अगले सेकंड भी प्रलय हो तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला, मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा, आगे भी वैसा ही रहने वाला हूं। इस पृथ्वी के नष्ट होने से आत्मा में, परमात्मा में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग, क्योंकि अगला गुण ही दैवी संपदा का ज्ञान योग व्यवस्थिति है। इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि समय जो है वो गिरीश भाई का भजन रह गया। बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।